केनरी लेबल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेसन नंबर टू, इसका जो टाइटल था मेटल, यानी मैटर हमारे आसपास के द्रव्य। तो मैटर वो एक द्रव्य है, मैटर यानी द्रव्य वो है जिसको हम देखें तो हम चारों तरफ मैटर से ही घिरे हुए हैं, यानी द्रव्य से ही घिरे हैं। ऐसी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। दुनिया को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें द्रव्य की प्रकृति को बारे में भी समझना आवश्यक है। इस चर्चा के दौरान हम बात करेंगे कि द्रव्य क्या है और उसकी प्रकृति क्या है और वो किन-किन अवस्थाओं में मिलता है। द्रव्य की अवस्थाओं पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक जो द्रव्य है उसको तत्व, यौगिक और मिश्रण में किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है, और मिश्रण में भी समांगी और विषमांगी दो स्थिति होती हैं, उन स्वरूप के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करने की कोशिश करेंगे कि विलायक, विलेय और विलयन का क्या अर्थ है, और इन पदार्थों के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे, और निलंबन के जो सस्पेंशन के गुणधर्म है और उपयोग क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मिश्रण को अगर हम अलग अलग स्वरूप में पृथक कैसे कर सकते हैं, उनकी क्या विधियां हैं उसके बारे में भी बात कर पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की, यानी जैसा हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्रत्येक चीज जो स्थान घिरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य है। हम अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, चाहे वो ठोस रूप में हो, द्रव में हो, जो और गैस, ये सभी वस्तुएं इसी रूप में बनी हुई हैं, इसी से बनी हुई हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो दूसरे शब्द अगर हम ये कहें कि जो द्रव्य है उसमें द्रव्यमान होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो उसमें भार है, और जितनी वस्तु जितनी भारी होगी उसका उतना ही अधिक द्रव्यमान होगा। और वैज्ञानिकों ने बोला है कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, तो ये कण आपस में जुड़े होते हैं। हम इन कणों को तो आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम द्रव्य को देख सकते हैं। जैसे आप पुस्तक देखते हैं, अगर आपने कार देखी, पत्ते देखे, हैंडसेट देखे, लकड़ी का टुकड़ा देखा है, या पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं वो देखे हैं, या ठेला देखा या थैला देखा है, तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं के उदाहरण हैं, और ये सभी द्रव्य ही है। और अगर हम बात करें कि एक पदार्थ जो शुद्ध प्रकार का द्रव्य है, जिसके घटक एक प्रकार के हैं, जैसे अगर जल है, सोना है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये सभी पदार्थों के उदाहरण हैं। और इसमें उसमें अगर सोना है तो सोने में सब एक ही कण है, और उन्हीं कणों का जो है उनका एक अपना एक आयतन है, अपना एक स्थान है, क्योंकि द्रव्य स्थान घेरता है। अगर स्थान घेर रहा है तो उसमें कोई वॉल्यूम या आयतन भी होगा। तब हम बात करते हैं कि क्या जो पदार्थ हमने देखे हैं, क्या सभी पदार्थ द्रव्य हैं, और क्या सभी पदार्थ जो द्रव्य पदार्थ हैं सभी पदार्थ का स्वरूप एक सा होता है? क्योंकि हमने पानी भी देखा है, हमने बैलून में भरी हुई हवा को भी देखा है, और हमने कांच का या लकड़ी का एक गुटका भी देखा। तो क्या ये तीनों एक ही जैसे हैं? नहीं, ये एक समान तो नहीं है, लेकिन एक चीज एक ही तरह की है। अगर लकड़ी का गुटका है तो वो सारा किसी भी उससे देखें एंगल से तो वो एक सा ही होगा। तो हम अब बात करेंगे कि जो कण, ये जो द्रव्य है उसकी जो कणीय प्रकृति है वो क्या है। तो हमेशा से ये एक सवाल उठता रहा है, प्राचीन समय में भी इस बारे में अलग अलग विचार थे। तो एक मत के अनुसार ये था कि अगर हम किसी पदार्थ का एक टुकड़ा ले लें, सपोज हम एक संगमरमर का टुकड़ा ले लेते हैं और उसे पीट टुकड़े टुकड़े करते हैं, बहुत छोटे टुकड़े में पाउडर जैसा बना लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़े से छोटे जगह पाउडर हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके कण को हम अलग नहीं कर पाते हैं। और ये हम कई बार इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं, और जब हम इसको तोड़ते हैं तो अलग अलग आकार में, पहले एक चौकोर सा टुकड़ा था या कैसे भी था, लेकिन अब उसको हमने तोड़ तोड़ के बहुत ही अलग अलग स्वरूप में टुकड़ों को बना लिया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो द्रव्य है वो कंटिन्यूअस है, यानी उसको हम बराबर करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। और उसी तरह से ये मानना था इस बात का कि किसी भी पदार्थ के टुकड़े को अगर हमने लिया है तो उसे हम एंड तक, लास्ट तक तोड़ते रह सकते हैं, यानी वो द्रव कंटिन्यूअस है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो यूनानी वैज्ञानिक दार्शनिक थे, प्लूटो और अरस्तु, उनका विचार था कि उपखंडों को बनाने की जो प्रक्रिया है वो सीमित है, उससे सीमित संख्या तक ही दोहराया जा सकता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको उसके बाद उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से बना है, और अर्थात ये कह सकते हैं कि जो द्रव्य की प्रकृति है वो कणों पर निर्भर है। द्रव्य के जो सबसे छोटा जो अविभाज्य कण है वो परमाणु नाम दिया गया था, और दूसरे शब्द इसका जो ये परमाणु वर्ड था वो ग्रीक शब्द एटोमास का से बना था। एटोमास का मतलब है कि वो विभाजित नहीं हो सकता है, अविभाज्य है। उसी तरह से जो भारतीय दार्शनिक थे कनाद, और यूनानी दार्शनिक ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस, वो भी इसी मत को मानते थे कि उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य कण लास्ट में परमाणु आ गया। शब्द परमाणु डेमोक्रेटस द्वारा दिया गया है, और इसके विषय में आज के विचार पहली बार इस प्रकार बदल गए थे, जो आ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के विषय में जो मॉडर्न थ्योरी है या मॉडर्न थॉट आए थे वो जॉन डाल्टन ने 1803 में दिए थे। आज हम दो प्रकार के घटक यानी अणु और परमाणु कणों को अणु और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ मानते हैं। परमाणु एक मूल इकाई है, इसके आधार पर ही द्रव्य के जो सभी रासायनिक गुण हैं उनको समझाया जाता है, जा सकता है। और द्रव्य अणु जो है द्रव्य के भौतिक गुणों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी द्रव्य को अगर हम परमाणु के आधार पर बताते हैं तो वो रासायनिक गुण बताएगा, और अगर हम अणु के हिसाब से बताते हैं तो वो उसके भौतिक गुण बताता है। परमाणु और अणु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, इसकी चर्चा अगले किसी अगले लेसन में आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और द्रव्य को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे हमने बात की कि द्रव्य की जो अवस्थाएं, हम भौतिक अवस्था के बारे में बात कर सकते हैं, और हम साथ में रासायनिक संरचना के द्वारा भी बात कर सकते हैं। जो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं उसमें हम लेते हैं ठोस, द्रव या गैस के रूप में, और जो रासायनिक संरचना को लेते हैं उसे हम लेते हैं तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में। तो इनका हम आगे बात करेंगे। तो हमने बात की कि भौतिक अवस्था की, तो आमतौर पर किसी भी द्रव्य को तीन अवस्थाओं में देखा जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। और इनके तीनों के द्रव्य के इन तीनों फॉर्म्स का अलग अलग गुण होता है। इसका सबसे अच्छा यूनिवर्सल उदाहरण हम लेते हैं पानी का। पानी को हम तीनों अवस्थाओं में डेली लाइफ में भी हर समय देखते रहते हैं। हम भाप या जल वाष्प के रूप में भी देखते हैं पानी को, हम कमरे के तापमान पर पानी को द्रव के रूप में भी देखते हैं, और ठोस अवस्था में यानी बर्फ के रूप में भी देखते हैं। तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो जाता है कि पानी जो कि तीनों अवस्था में दिखाई दे जाता है, मिलता है। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के विशिष्ट गुण उनके अंतरणुक बल पर निर्भर होते हैं। अंतरणुक बल क्या है? वो दो घटक अणुओं के, दो अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसका है, और ये जो अणु हैं वो एक साथ रखने की कोशिश करता है, परंतु तापीय ऊर्जा उन्हें सदैव दूर करने की कोशिश करती है। और एक पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में ठोस, द्रव या गैस के रूप में अब होता है, और जो उसके अणुओं की अन्योन्य क्रियाओं के ऊर्जा और तापीय ऊर्जा के बीच में जो अंतर होता है उस पर निर्भर करता है। तापीय युष्मीय ऊर्जा यदि अंतरणुक बल से अधिक होती है तो द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकती है। तो ये कह सकते हैं कि द्रव्य की एक विशेष अवस्था अंतराणुक बल और तापीय ऊर्जा जो मूल रूप से तापमान पर आधारित है दोनों पर ही निर्भर करती है। द्रव्य की हर अवस्था के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, तो अब इन इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ठोस, हम देख अपने चारों तरफ अगर एग्जाम्पल देखें तो ठोस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे असंख्य ठोस वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कलम हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ये सभी ठोस के स्वरूप हैं। ठोस की विशेषता ये है कि ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है और ये अपना स्वरूप खुद नहीं बदलते हैं, लेकिन अगर हम उस पर बाह्य बल अप्लाई करें तो हम ठोस के आकार को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कोई धातु का एक टुकड़ा ले लेते हैं और या तो उसे हम टुकड़ों में काट सकते हैं या फिर हथौड़े से उसे पीट, अगर कोई हमने धातु ली है उसका एक टुकड़ा लिया हथौड़े से तोड़ा तो वो दो पीस में हो गया, लेकिन अगर हम उसे पीट पीट के आगे तक खींचते जाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है और वो तार भी बना सकते हैं उस धातु के। ठोस में घटक कण एक दूसरे के बहुत, जो अणु हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं और उनके जो बल है उनके उसमें बल बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, इसी वजह से वो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ठोस में जो अणुओं की स्थितियां हैं वो निश्चित होती हैं, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि ठोस कठोर और दृढ़ होते हैं और ठोस को दबाया नहीं जा सकता। अगर कोई भी आप चीज़ लेंगे, ठोस वाला लकड़ी का गुटखा भी ले लिया या पत्थर का एक टुकड़ा लिया, तो उसको आप दबा के प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसे संपिंडित नहीं कर सक किया जा सकता है। और यदि ठोस के अणु और परमाणु बलपूर्वक पास लाए जाते हैं तो उनके बीच का जो अंतराणुक बल का आकर्षण है बल से विकर्षण बन जाता है। और उसी तरह से जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की जो है तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है और जिसके परिणाम से वो ठोस जो है द्रव में रूपांतरित हो जाता है, और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे अगर हमने बर्फ का टुकड़ा लिया और उसे गर्म किया तो एक निश्चित तापमान के बाद वो पानी बन जाता है, वो उसका जिस तापमान पर जिस पॉइंट पर वो पिघल जाती है वो उसका गलनांक पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम द्रव की बात करते हैं तो सबसे आप अपने घरों में देखते हैं कितने तरह के हम द्रव इस्तेमाल करते हैं, पानी भी एक द्रव है। और अन्य जो एग्जाम्पल लें तो तेल हो गया, घी हो गया आपका, वो भी मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब द्रव के ही उदाहरण हैं। और आप बहुत सारे उदाहरण भी आप सोच सकते हैं। और अगर हम बात करें तो द्रव का जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, उसे जिस पात्र में डाला जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। अगर पानी को एक बॉटल में रखा तो पानी बॉटल के आकार का हो जाता है, अगर उसे एक कंटेनर में रखा तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है। द्रव का प्रवाह कर सकते हैं, वो बह सकते हैं। अगर हम ठोस को देखें तो ठोस को बहाया नहीं जा सकता है, द्रव को उंडेला और फैलाया जा सकता है। आपको मैंने बोला कि वो ठोस को फैला नहीं सकते हैं, तो आपको ये आप उसका सीधा देख सकते हैं, उसको आप खिसका सकते हैं, लेकिन आप अगर फैलाएं तो जमीन पर या कहीं पानी कहीं भी गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, मतलब इकट्ठा नहीं रहेगा, फैल जाता है। तो द्रव के गुण जो हैं ठोस और गैस के मध्यवर्ती हैं। द्रव के अंतराणुक बल ठोस की तुलना में दुर्बल होते हैं लेकिन गैस की मतलब ठोस से कम होते हैं लेकिन गैस से ज़्यादा होते हैं। और द्रव में जो घटक कणों की स्थिति ठोस की तरह से निश्चित नहीं होती है, परंतु वो गैसों की तरह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तभी वो पानी अगर हमने गर्म करने रखा है तो वो गर्म हो जाता है द्रव में। और उस क्योंकि द्रव के जो घटक हैं अणु और परमाणु वो एक दूसरे से अलग हो जाते टूट जाते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं और दूसरे अणुओं को पास आने पर उनको और आकर्षित भी हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम दबाव डालकर अणुओं को पास लेने का प्रयास करें तो ठोस की तरह से इनके भी जो अंतराणुक बल हैं वो प्रतिकर्षी हो जाते हैं, और यही कारण है कि द्रव के आयतन पर ताप का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस को हम आँख से तो नहीं देख सकते हैं लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है और जब हवा चलती है या पवन है तो हम वायु को महसूस कर सकते हैं, और जो चलती हुई हवा है उसको हम पवन कहते हैं। और ये जो पवन है या वायु है, ये कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, और भी कई जल वाष्प होती है। इस तरह से इसका कंपोजिशन होता है। गैस को एक पात्र में की आकार, अगर गैस एक पात्र में है तो उस आकार को ध्यान उसी बगैर उसको ध्यान रखे हुए पात्र का जो आकार है उसको ध्यान रखे, वो पूरे आयतन को घेर लेती है। जबकि अगर पानी अगर हमने हाफ बॉटल में डाला है, आधा ग्लास पानी, तो वो आधा ही रहेगा, लेकिन गैस वो पूरे बॉटल में या गुब्बारे में जिसमें भी आप डालेंगे उसमें वो फैल जाती है। गैस का जो अणु है उनका अंतराणु जो बल है वो कम होने के कारण आसानी से गतिमान रहता है, और इनके बीच का जो अंतराणु बल है उनके अणुओं को हम एक साथ इकट्ठा रखने में असमर्थ होते हैं। और यही वजह है कि कमजोर आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्योंकि अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं इसीलिए हम उन्हें दाव लगाकर पास लाने की कोशिश कर सकते हैं करते हैं। इसी कारण माना जाता है कि गैसें बहुत ही संपीड्य होती हैं। हम गैस को केवल एक निश्चित सीमा तक ही संपीड़ित कर सकते हैं, उस सीमा के बाद गैस का अणुओं के जो बीच का प्रतिकर्षण बल है वो बहुत अधिक हो जाता है। तापमान भी गैस के और आयतन को प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने के साथ गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हम गर्म बंद पात्र में गर्म करें तो तेजी से उसका आयतन बढ़ने के कारण विस्फोट हो जाता है। और हमको मालूम है कि गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए सीएनजी अगर संपीड़ित नहीं कर पाते तो हमें सीएनजी नहीं मिलती। और हम जो घरों में ऑटो रिक्शा, घरों में जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए संभव हुआ कि हम गैस को, क्योंकि गैस संपीड्य है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि आजकल बसेज में ऑटो रिक्शा वगैरह के पीछे लिखा होता है सीएनजी लिखा होता है, यानी वो वाहन सीएनजी चले था, यानी गैस से चल रहा है। और इसके और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में होता है, तो वो भी गैस का ही एक उदाहरण है। अच्छा, गैस के अणुओं के बीच में जो वितरण का जो एक योजनाबद्ध तरीके से निरूपण जो किया गया है, चित्रित किया गया है, वो आपके बुक के फिगर नंबर 2.2 में किया गया है। उसे आप देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गैस के अणुओं, गैस ठोस द्रव और गैस के अणुओं में किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें मालूम है कि हमने पढ़ा है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं ही होती हैं जो पृथ्वी पर प्रभावी हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड के अन्य भाग हैं उनमें ये कम प्रासंगिक है। आपको ये जानकर बड़े आश्चर्य लगेगा कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसका 90% द्रव्य जो है ठोस या द्रव या गैस नहीं है, बल्कि उस जो प्रभावी रूप है द्रव का उसको प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य और दूसरे सितारे प्लाज्मा से बने होते हैं। प्लाज्मा के विषय में क्या है उसका डिटेल आप आपकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड और सूर्य, ब्रह्मांड का 99% भाग प्लाज्मा से होता है। द्रव्य ठोस और जो गैस की जो विशेषताएं हैं, द्रव्य की जो विशेषताएं हैं उनको आपके बुक में एक टेबल दिया है, टेबल नंबर है 2.1, जिसमें आयतन के आधार पर, घनत्व के आधार पर, आकृति के आधार पर, तरलता के आधार पर और संपीड्यता के आधार पर उसको अंतर दिया गया है। यानी ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अगर बात करें घनत्व की तो ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है और गैस का बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कम होता है। इसी तरह से ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव अनिश्चित आकृति वाले हैं, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, और गैस का भी अनिश्चित आकार होता है। तरलता, ठोस को बहाने से वो कभी बहेगा नहीं, लेकिन गैस आसानी से बह जाती है, और उसी तरह से द्रव भी आसानी से बहते हैं। अगर हम संपीड्यता की बात करें तो ठोस में ये बिल्कुल नगण्य होती है, द्रव में बहुत कम होती है और गैस में अत्यधिक कम होती है। तो हम बात करते हैं कि कुछ जनरल सा, कि इस भौतिक दुनिया में दो मूल धारणाएं हैं जिसके द्वारा हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये जो मूल धारणा है द्रव्य और ऊर्जा की, द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक सूत्र यानी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। या E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है और C प्रकाश का वेग है। आज तक के जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों से आज जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो नाम हम लेते हैं, वो महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने दिखाया था कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित करना आसान है, जबकि ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित करना थोड़ा कठिन है। अब हम बात करते हैं कि द्रव्य की अवस्थाओं पर तापमान और दाब के पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम ठोस को गर्म करें तो क्या होगा? अगर हम बात करें कि अगर उसे गर्म करें, अगर ठोस को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, और लेकिन इसका प्रसार काफ़ी कम होता है, क्योंकि वास्तव में जो तापीय ऊर्जा प्राप्त करके उसके कण, जो अणु और परमाणु हैं, वो अपने स्थान में ही तेजी से कंपन करते हैं और वे अधिक स्थान घेर लेते हैं। यदि ताप में और वृद्धि की जाए तो कण अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं और अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ठोस पिघल जाता है। जब एक बार ठोस हो जाता है तो उसे फिर पात्र में उड़ाला जाता है, तो वो वापस वो बन गया। उसी तरह से हमने बात की थी कि जैसे द्रव जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। इस द्रव अवस्था में कण गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो गर्मी प्राप्त करके वो जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, माना जाता है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि द्रव के जो अंतरणुक बल पर काबू पा लेती हैं और द्रव गैस में बदल जाता है। इसका एक चित्रण आपका द्रव की अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण का और ठोस का, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में अंतराकरण का रूपांतरण चित्र नंबर 2.3 और 2.4 में दिखाया गया है कि किस तरह से ये बदलते हैं। और जब हम गैस को गर्म करते हैं तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। वे स्वतंत्र रूप से और तेज गति से गति करते हैं, और यदि दाब को स्थिर रखा जाए तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है और गैस का आयतन बढ़ जाता है। जब हम हवा से भरा हुआ गुब्बारा आग के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि हमने बहुत सारी हवा भी भरी और उसके बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है गुब्बारे में, तो गुब्बारा फट जाता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध ठोस पदार्थ का एक निश्चित तापमान पर द्रव में बदल जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ एक विशेष तापमान पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस विशेष तापमान को हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसी प्रकार जब ठंडा हो जाता है द्रव तो एक विशेष तापमान पर वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और इस जब वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम उस तापमान को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। और अगर वो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस में बदल जाता है तो उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है कि हम द्रव की तीनों अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को किस तरह से देख सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको चाहिए वो तो आप अगर घर में, अगर गैस आप बर्फ आपके पास होता है, बर्तन आपके पास होगा, गैस या दूसरा गैस बर्नर भी आपके पास है, तो एक पात्र में आप बर्फ रखकर अगर उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पिघल कर पानी बदल जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि द्रव की तीनों अवस्थाएं तापमान और दाब में परिवर्तन के साथ अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाती है। जब ताप बढ़ता है तो सभी तीनों अवस्थाओं का प्रसार या उसके आयतन में वृद्धि होती है, और जब ताप घटता है तो वो संकुचित होते हैं और उनका आयतन भी कम हो जाता है। ठोस और द्रव का दाब पर जो प्रभाव है वो नगण्य होता है, और गैस को दाब के प्रयोग के में आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ठोस तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे तत्व की। सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। रासायनिक तत्व तत्व का द्रव्य का मूल रूप है, जिसे रासायनिक विधि के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं, जिनकी पहचान परमाणु संख्या से होती है, बना होता है। जैसे जो कार्बन है, हीलियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयोडीन है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। ये कुछ तत्वों के हम उदाहरण देते हैं। तत्व ब्रह्मांड के निर्माण खंड माने जाते हैं, और अभी तक 118 तत्वों को सूचीबद्ध किया गया है, और इसको हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से करते हैं, जिसे हम आगे किसी लेसन में आपसे डिस्कस करेंगे। कुल ज्ञात जो तत्व हैं, 118 तत्व, उनमें से 90 जो तत्व हैं वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और शेष जो तत्व हैं उनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। केवल दो तत्व, हाइड्रोजन और हीलियम, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग बना देते हैं। ब्रह्मांड के जो द्रव्यमान में शेष तत्वों का जो योगदान है, वो बाकी हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जितने भी तत्व हैं वो 1% की कैटेगरी में आते हैं, और ब्रह्मांड के द्रव्यमान को बनाने में सहयोग करते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो पाए गए 90 तत्व हैं, उनमें से दो तत्व जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन हैं, वो एक साथ मिलकर पृथ्वी की परत का 3/4 भाग बनाते हैं। यानी हमारा शरीर भी तत्वों से मिलकर ही बना होता है, लेकिन जो मानव शरीर की रचना है वो पृथ्वी की परत से बहुत भिन्न होती है। इसके लिए एक सारणी आपकी बुक में दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की परत में और मानव शरीर में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनकी कितनी मात्रा होती है। जैसे अगर पृथ्वी की परत की बात करें, तो उसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, लोहा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम और सल्फर का कंट्रीब्यूशन होता है, सबका एक मात्रा दी गई है। उसी तरह से अगर हम बात करें, तो हमारे शरीर में एल्युमिनियम बहुत कम होता है, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम और सल्फर की मात्रा से हमारा शरीर बनता है, और बाकी जो भी जैसे एल्युमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया और सल्फर सिलिकॉन हो गया, इसकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर में की संरचना में योगदान करती है। तो अगर हाँ, ये जो मानव, पृथ्वी, प्राणी और जो पृथ्वी की संरचना में जो इन तत्वों का योगदान है, तो उसी लिए हमको ये सोचना सोचने में सक्षम होते हैं, सोचने में इसलिए सक्षम है क्योंकि हमारे पास हमारे एक विकसित मस्तिष्क है, और इसी मस्तिष्क की हेल्प से, मदद से हम हमारी पृथ्वी के देखभाल करने के लिए, यानी पृथ्वी का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसको संभालने में हमें अपना योगदान करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं यौगिक की। जब दो या दो से अधिक तत्व मिल रासायनिक सहयोग करते हैं तो यौगिक बनता है। यौगिक को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यौगिक पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार या अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जब तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो वो अपना जो व्यक्तिगत रूप गुण है उसको खो देते हैं। तो इसीलिए यौगिक के गुण अपने अवयवों से भिन्न होते हैं। अगर हम पानी का उदाहरण लें, तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, लेकिन पानी के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल भिन्न हैं। यानी यौगिकों का संसार वास्तव में आकर्षक तो होता है, लेकिन उनके रूपों और गुणों में काफ़ी विविधता होती है। यौगिक के कुछ उदाहरण आपके बुक में दिए हुए हैं, उनमें से मैं कुछ लेती हूँ। जैसे ग्लूकोज है, उसमें ग्लिसरॉल और कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, ये सभी यौगिकों के उदाहरण हैं। इसमें दो चीजें, दो तत्व मिलकर ही यौगिक बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, यानी हम अपने अगर डेली लाइफ में, रूटीन में भी देखें तो हम बहुत सारे मिश्रण पदार्थों के संपर्क में आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से है। तो हम बात करें कि मिश्रण कैसे होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि मिश्रण के भाग पूरी तरह से मिश्रित हैं या नहीं। द्रवों के तत्वों, यौगिकों और दूसरी श्रेणियों के बीच जो संबंध है उसको हमने फिगर नंबर 2.6 में, सॉरी 2.7 में एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। टेबुलर फॉर्म में है, आप उसे देख सकते हैं कि द्रव्य को दो भाग उसमें डिवाइड करते हैं, पदार्थ और मिश्रण को। पदार्थ में तत्व और यौगिक आ रहे हैं, और मिश्रण में दो तरह के मिश्रण हैं, यानी सामांगी और विषमांगी। पदार्थ की बात की तो केवल एक पदार्थ निश्चित संरचना के साथ मौजूद होता है, जैसे लोहा या पानी। अगर मिश्रण की बात करते हैं तो एक से अधिक पदार्थ मौजूद होते हैं एक समान अथवा अलग अवस्था में, जैसे मिश्र धातु हो गई, मिट्टी हो गई, शीतल पेय हो गया। उसी तरह से अगर पदार्थ को हम दो भाग में विभाजित करते हैं, पहला होता है तत्व, यानी रासायनिक तरीके से अलग पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन। जबकि यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। उदाहरण के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, नमक आदि हो जाते हैं। और मिश्रण की हम बात करते हैं तो मिश्रण में दो प्रकार के होते हैं, यानी समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बात करते हैं कि मौजूद पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित और मिश्रण की संरचना पूरी तरह से एक समान है। जैसे हवा, चीनी का शरबत हो गया, समुद्र का पानी हो गया, तो एक समान है। लेकिन विषमांगी मिश्रण ये होते हैं कि पदार्थ एक दूसरे से अलग रहते हैं और मिश्रण की संरचना एक समान नहीं हो सकती। जैसे गंदा पानी, उसमें कुछ और भी मिक्स होता है। पानी में रेत अगर मिलाएं, मिट्टी मिलाएं, तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं समांगी मिश्रण की, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी को, बच्चों को या बड़ों को उल्टी दस्त हो जाते हैं तो ORS का घोल देते हैं। और ये ORS होता क्या है? ORS हम जो घर में बना लेते हैं कि पानी में थोड़ी एक पिंच नमक डाला और एक चम्मच चीनी डाल के हम ORS का घोल तैयार करते हैं, तो ORS एक तरह का जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, विलयन का उदाहरण है। तो हम अब बात करते हैं कि कुछ मिश्रण में घटक पूरी तरह से मिश्रित होते हैं कि पूरे मिश्रण की संरचना एक समान होती है। ऐसे मिश्रण जिनकी संरचना जो है एक समान होती है, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमने एक जग में पानी और चीनी का घोल का शरबत तैयार कर लिया, और पूरे मिश्रण का में जो मिठास है वो एक समान होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक समांगी मिश्रण को ही विलयन हम कहते हैं। यानी अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नमक लिया जो कि ठोस है, और जब पानी में घोला जाता है तो एक तरल मिश्रण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, नमक का विलयन कह देते हैं, नमक का घोल कह देते हैं। नमक पानी में पूरी तरह से समान रूप से फैलकर विलीन हो जाता है, दिखता नहीं है और दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से अगर हम पृथ्वी की सतह का देखें तो हमें पता है कि हमारे यहाँ दो तिहाई समुद्र पानी, जो पृथ्वी की सतह है वो दो तिहाई भाग जो है समुद्र से ढकी हुई है, पानी से ढका हुआ है। और जो कुछ नहीं है विभिन्न, वो क्या है, विभिन्न लवणों का पानी में समांगी मिश्रण ही तो है। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी घुली रहती हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें, वो भी विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण ही है। दो द्रव भी समांगी मिश्रण बना सकते हैं। उदाहरण अगर ले लें तो हम पानी में एथिल अल्कोहल के साथ, जो पानी है, पानी एथिल अल्कोहल के साथ घुलनशील है, और कई ऐसी मिश्र धातुएं भी हैं जो दो या दो से अधिक समांगी धातुओं का मिश्रण हो सकती हैं। यानी सोना और तांबा समांगी ठोस विलयन बनाते हैं। तो और कितना तांबा और सोना मिलाया गया है, तो सुनार इसके लिए एक परीक्षण करके बता देता है, सोने की जांच की जाती, जांच करके बताता है कि उसमें कितना सोना है, यानी कितनी प्योरिटी है सोने की। तो एक समांगी मिश्रण वो मिश्रण है जहाँ पदार्थ पूरी तरह से एक साथ मिश्रित होता है और जिसकी पूरी संरचना एक समान होती है। आपकी बुक में एक टेबल बना है 2.3, जिसमें समांगी मिश्रण के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। उसमें ठोस और द्रव की अगर हम बात करें तो ठोस विवरण क्या हो जाएगा इसका कि ठोस तरल में घुलकर पारदर्शी विलय बनाता है। इसका उदाहरण है कि पानी चीनी का पानी में विलयन या नमक का पानी में विलयन, आयोडीन का एथिल अल्कोहल में विलयन, ये इसके उदाहरण हैं। आप कुछ और भी उदाहरण सोच सकते हैं आपके समझ से। मिश्रण द्रव और द्रव भी हो सकता है, एक पारदर्शी विलयन बना देता है। इसका उदाहरण है पानी में इथाइल अल्कोहल का मिश्रण। गैस और द्रव पूरी तरह से घुल पानी में घुलकर एक पारदर्शी विलयन बना देते हैं, यानी सोडा वाटर या साधारण शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके बारे में बात की, उदाहरण दिया है इसका। गैस में गैस का भी मिश्रण हो सकता है, यानी दो या दो से अधिक गैस होना, जैसे हवा की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस उसमें मिली होती है। हम ठोस का ठोस में भी मिश्रण बना सकते हैं, यानी कुछ मिश्रण जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया। और इसके बारे में आपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रणों की, क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट से हम नमकीन लेके आते हैं, मिक्सर लेके आए, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। उसमें सेब भी होगा, उसमें मूँगफली भी होगी और बहुत सारी चीज़ें उसमें डली होती हैं, और आप उसको हर घटक को अपनी आँख से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। दाल भी हो सकती है। ऐसे मिश्रण जिसमें उनके घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिले नहीं होते हैं और अलग रखे जाते हैं, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के छोटे कणों, छोटे बूंदों या बलूना के रूप में फैला होता है। और कहा जाए कि विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण है वो जहाँ पदार्थ अलग अलग रहते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं हो सकती है। और इसके लिए एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ टाइप बताए हैं मिश्रण के, विषमांगी मिश्रण के प्रकार। तो उनका जैसे निलंबन हो सकता है एक टाइप, उसमें ठोस और द्रव को मिक्स किया जाता है, यानी आटा और पानी का मिश्रण, या नदी का गंदा गदला जो पानी होता है जिसमें मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी पूरी से घुलती नहीं है, आप थोड़ा सा हिला दीजिए, बाद में वो पानी मटमैला सा दिखाएगा और नीचे मिट्टी बैठी। जेल ठोस में के बीच में फंसा हुआ, जो फलों की जैली हो सकती है या जेल हो सकता है। पायस यानी इमल्शन होता है, छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे द्रव में निलंबित होती हैं। जैसे दूध अगर देखें आप, फुल क्रीम देते हैं तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी दिखाई देते हैं। एरोसोल द्रव की छोटी बूंदें होती हैं और ठोस के कण बिखरे हुए होते हैं। बादल धुआं इसके उदाहरण हैं। और झाग द्रव में गैस के छोटे छोटे बुलबुले द्रव के बीच और ठोस में गैस हो सकती है। जैसे आप शेविंग फॉर्म को देखें, थर्मोकॉल को देख सकते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। और इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं कि आपके घर और आसपास में कम से कम 10 अलग अलग चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं और उन्हें उनकी संरचना के आधार पर, जो एक आपकी सारणी बनी हुई है, एक एक्टिविटी दी है 2.3, उसमें आप भर सकते हैं। तो अभी हमने अब तक हमने बात की थी कि ठोस और द्रव और गैस, उनके समांगी और तत्व और यौगिक के बारे में बात की थी। आज के लिए, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले प्रोग्राम में हम फिर आगे इसके आगे बात करेंगे।